के फूलो अलसाई ली धरती ने भी अंगड़ाई।
ओम शांति। बाबा हमारे विश्व पिता है और उनके बच्चे हम सब सारे विश्व के कोने कोने में हैं। तो बाबा का पहला वर्षा क्या है? जो दुनिया बाबा बनाते हैं उसमें एक ही भाषा होगी, वहां आपको एक दूसरे की बात को समझने के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेट नहीं करनी पड़ेगी और ना ही अपने साथ कोई FM वगैरह लेके चलना पड़ेगा, तो समय भी बच जाएगा और जैसी बात है वैसी समझ में आएगी। अनेकता से एकता लाना और सभी मनुष्य आत्माओं को एक ही कल्चर सिखाना, कौन सा कल्चर? ब्राह्मण कल्चर, ये बाबा का ही काम है। इस दुनिया के जितने भी विद्वान वैज्ञानिक आदि हुए हैं सब ने एकता से अनेकता लाई है और बाबा फिर से हम बच्चों के द्वारा अनेकता से एकता की दुनिया स्थापित कर रहे हैं। हमें यह देखना है कि आज का शुभ दिन जिस दिन हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं, बाबा हमेशा कहते हैं कुछ बच्चे सन्मुख बैठे हैं, कुछ बच्चे दूर बैठे भी सन्मुख हैं जो कि बाबा को सुनेंगे देखेंगे। सबका ध्यान इस शाम को मधुबन की ओर केंद्रित होगा, क्योंकि प्यारे बाप दादा हमारे निमंत्रण पर मधुबन में पधारने वाले हैं और हम सब बच्चे जो इस विशाल बेहद के डायमंड हॉल में यहां इकट्ठे होकर बैठे हैं, हमें बाबा की डायरेक्ट दृष्टि भी मिलने वाली है, डायरेक्ट वरदान भी मिलने वाले हैं, हमारा मिलन बिल्कुल डायरेक्ट होने वाला है। तो इस मिलन के लिए, इस विशेष मधुर मिलन के लिए, इस मिलन के द्वारा पूरी पूरी प्राप्ति करने के लिए हमें किन किन बातों को स्मृति में रखना है वो बातें हम सब जानते हैं, लेकिन समय के अनुसार उनको विशेष स्मृति में लाना है, इमर्ज करना है, वो अभी हम सब विचार करने वाले हैं। जैसे हम यहां सबसे ज्यादा ध्यान किस बात को दे रहे हैं, अपनी सीट को सीट पर सेट होने को दे रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी हमारे बातचीत करने का समय भी हो गया है और अभी ट्रैफिक कंट्रोल भी हुआ था, फिर भी जिन बाबा के बच्चों को अभी तक अपनी सीट नहीं मिली है उनका सबसे प्रथम ध्यान कहाँ है? उनका सबसे प्रथम ध्यान है हम अपनी सीट पर सेट हो जाएं, क्योंकि जब सीट होगी तो बाप दादा से मिलन ठीक तरह मना सकेंगे। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि अगर एक मौके पर सीट पर सेट होने का इतना महत्व है तो सदा काल के लिए बेहद के प्राप्ति के लिए हमें कौन सी सीट पर सदा के लिए सेट रहना है। बाबा कहते हैं इस सीट पर तो हम शरीरों के द्वारा सेट हो रहे हैं, और कई बच्चे क्योंकि शरीर की सीट पर सेट होने को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो उनके मन में ये भी आता है कि जो आगे बैठते हैं उनको बाबा नज़दीक से मिलते हैं और वो जो बिल्कुल पीछे बैठे हैं या साइडों में बैठे हैं उनको वो शायद समझते हैं कि बाप दादा की मुलाकात इतनी नज़दीक से नहीं होती है। इसका कारण यही है कि हम जो बाप दादा के मिलने का पावर है, जो माध्यम है, उससे हम थोड़ा सा खिसक जाते हैं। सीट पर तो सेट होते हैं लेकिन जो हमारी स्थिति की सीट है उस पर सेट होने में ध्यान देने की बजाय शारीरिक सीट पर सेट होने को ध्यान देते हैं। कई बच्चे बाबा के हमें बताते हैं बिल्कुल आगे बैठे हैं, बाबा को पूरा नहीं पहचानते हैं, VIP हैं, VIP होने कारण उनको रिगार्ड के तौर पे आगे सीट देते हैं। वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, बाबा के बोल तो अनमोल होते हैं, ज्ञान रतन तो हर एक को अच्छे लगते हैं, वो उनको समझ में आते हैं, लेकिन मिलन मुलाकात वो कहते हैं पूरा समझ में नहीं आया है। इसकी भेंट में जो बिल्कुल पीछे या किसी कोने में छिपे हुए बच्चे बैठे हैं, हजारों की संख्या है, यहां कम से कम 10,000 से अधिक शरीरधारी जीवात्माएं बैठी हैं, और मैं अभी यही सोच रहा था कि अगर हम अपनी 9,00,000 की संख्या को देखें तो इस प्रकार के 100 हाल बाबा के बच्चों से एकदम आ जाए तो भरे हुए होंगे। तो इतने सारे बच्चों को बाबा मिलन मिलाने आते हैं तो अवश्य ही बाबा की विधि इतनी न्यारी और प्यारी है जो हर एक भरपूर हो जाए। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भाई हम यहां आए हैं, हमें किस विधि से मिलन मनाना है। तो हर बच्चे को बाबा ने जन्मते ही हम सब ब्राह्मणों को जन्मते ही बाबा ने गिफ्ट दिया है। वो गिफ्ट क्या है? वो है तीसरी आंख का गिफ्ट। हम सबको तीसरी आंख का गिफ्ट है। हम सब तीसरे नेत्र वाले हैं, त्रिनेत्री हैं। दुनिया के लोग भक्ति मार्ग में मानते हैं कि भगवान ने, शिव ने तीसरा नेत्र खोला, और तीसरा नेत्र खोलने से सब बुराई का विनाश हो गया। परंतु शिव ने किसका तीसरा नेत्र खोला? तो भगत लोग समझते हैं कि शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। तो बाबा कहते हैं कि शिव ने बच्चों का तीसरा नेत्र खोला। तो हम सबको जन्मते ही बर्थडे गिफ्ट बाबा ने तीसरा नेत्र दिया हुआ है। अभी हम जो बाबा से मिलन मनाने वाले हैं, वो इन दो आंखों से मनाने वाले नहीं हैं। जो दो आंखों से देखते हैं उनको क्या दिखता है? ये दो आंखें चरम चक्षु हैं, तत्वों के बने हुए हैं, शरीर का अंग है। इनसे हमको शरीर ही दिखता है और तत्वों की बनी हुई वस्तुएं ही दिखती हैं। तो अगर आप दो आंख से, इन दो स्थूल आंखों से बाप दादा से मिलन मनाने की या दृष्टि लेने की भावना रखेंगे, तो फिर तो आपको लगेगा कि जो समीप बैठे हैं वो ज्यादा समीप से दृष्टि ले रहे हैं, और जो दूर बैठे हैं या किसी कोने में बैठे हैं वो बाबा से दृष्टि लेकर नजर से निहाल होने में दूर हैं। परंतु बाबा हमेशा क्या कहते हैं? बाबा हमेशा कहते हैं कि जो दूर है वो भी मेरे समीप है, क्योंकि ये तीसरी आंख जो है ये बहुत पावरफुल है। तीसरी आंख का किसी फासले से, किसी डिस्टेंस से कोई तलक नहीं है। तीसरी आंख बहुत दूर बैठे भी हर चीज को समीप से देख सकती है, और बाबा ने हम सबको त्रिनेत्री बनाया है। बर्थडे गिफ्ट है, हम सबको अपनी तीसरी आंख खोल के रखनी है। तीसरी आंख किस पावर से देखती है? जैसे ये दो आंखें हैं, ये तो लाइट की पावर से देखती हैं। अगर आपको दूर देखना हो तो आपको यंत्र लगाना पड़ता है, लेकिन तीसरी आंख प्रेम, लव, स्नेह की शक्ति से देखती है। इसलिए बाबा के जिस बच्चे का जितना स्नेह, गहरा स्नेह, पूरा स्नेह बाबा के साथ है, वो बाबा को दूर बैठे भी सामने देखेंगे और उनको ऐसे ही प्राप्ति होगी जैसे मैं और बाबा और कोई नहीं है। भले इस हॉल के अंदर हजारों आत्माएं हैं, सबने बाबा से मिलना है, उस आत्मा को क्या अनुभव होगा हमने बाबा से मिला ये नहीं, मैंने बाबा से मिला। जैसे प्रेम में खोया हुआ कोई होता है संसार में भी, प्रेम में खोया हुआ जिसको हम लव लीन कहते हैं, प्रेम में डूबा हुआ, उसको दुनिया की और कोई चीज दिखाई नहीं देती। उसके आसपास क्या हो रहा है उसको उसका कोई सुध-बुध नहीं होती। प्रेम का पहला काम क्या है कि व्यक्ति अपनी संसारिक सुध-बुध भूल जाता है। ऐसे बहुत से स्टोरीज भक्ति मार्ग में हम सुनते रहे हैं। इसलिए बाबा के प्रेम में विभोर होकर, बाबा तो है ही प्रेम के सागर, और इस दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा पावरफुल कोई चीज व्यक्ति को कनेक्शन में लाती है, संबंध में लाती है, समीपता में लाती है, वो है प्रेम। तो तीसरी आंख से प्रेम में विभोर होकर कोई कहीं भी बैठे होंगे, उनको बाबा का मिलन ऐसे लगेगा जैसे 1-to-1 कि मेरी मुलाकात बाबा से हो रही है, बाबा मेरे लिए ही आए हैं। तो इसलिए आप सभी इस बात को स्मृति में रखें, हमें तीसरी आंख से मिलना है, तीसरी आंख से ही दृष्टि लेनी है, इन दो आंखों के द्वारा, लेकिन बाबा की बेहद की दृष्टि। जो कुछ बाबा हमें देते हैं वो बेहद का है, वो इन हद की आंखों के द्वारा हद की बुद्धि में नहीं समा सकता है। इसलिए तीसरी आंख खोलकर और जितना प्रेम आज हम इकट्ठा करके अपने अंदर फोकस करके बाबा को मिलेंगे, उतनी हमें फुल प्राप्ति होगी। अब प्रेम जो है वो बिखर कैसे जाता है और प्रेम को इकट्ठा कैसे करना है, ये हम सब जानते हैं। प्रेम का आधार होता है संबंध और प्राप्ति। जहां किसी व्यक्ति को प्राप्ति होती है, चाहे हद की थोड़ी प्राप्ति भी हो, वहां उसका मन ऑटोमेटिकली जाता है। फायदा है, लाभ है, सम्मान है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, इजी लगता है, लाइफ अच्छी लगती है, तो ऐसी तरफ मन जाता है। इसीलिए अल्पकाल की भी जो प्राप्ति अल्पकाल का सुख देने वाली है, उसकी तरफ मनुष्यों का ध्यान या कनेक्शन ऑटोमेटिकली जाता है। और इसीलिए अल्पकाल के जो संबंध हैं, रिलेशनशिप हैं, उनमें भी व्यक्ति बंधा रहता है, क्योंकि वहां प्राप्ति है। तो बाबा ने हमें बताया है कि बच्चे, संबंध, इस दुनिया के संबंध आपने पूरे 84 जन्म अनुभव किए हुए हैं, माता पिता बंधु सखा टीचर गुरु फ्रेंड पति पत्नी नेबर ये सब रिलेशनशिप हम बच्चों ने पूरा कल्प अनुभव किए हुए हैं। पहले हमने ये संबंध बिना बंधन वाले बिना बोझ वाले मुक्त बंधन बंधन से मुक्त सतयुग और त्रेता में अनुभव किए हुए हैं। वह संबंध हमें प्राप्ति के आधार पर मिले उसको हम संबंध कहते हैं बंधन नहीं कहते हैं। बाबा ने अभी कहा है मुरली में कि लक्ष्मी नारायण अपने बच्चों को राजगद्दी नहीं देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण के बच्चे क्या ट्रांसलेशन नहीं हो रहा? हो रहा है ट्रांसलेशन? ओके। श्री लक्ष्मी नारायण के बच्चे कहां से इनहेरिटेंस प्राप्त करते हैं? निमित्त मात्र उनसे करते हैं, लेकिन अपनी प्रारब्ध जो बाबा हमें संगम पर देते हैं वो पाते हैं। तो सतयुग त्रेता में तो हम अपनी प्रारब्ध भोगते हैं और द्वापर से लेकर हमारे संबंध धीरे धीरे बंधन में बदल जाते हैं। वो मुक्त नहीं होते बंधन वाले होते हैं। इसीलिए हम उनको कर्म बंधन पर आधारित रिलेशनशिप्स कहते हैं। क्या है? स्लो। इसीलिए हम उनको कर्म बंधन पर आधारित संबंध कहते हैं। और आज भी बाबा ने कहा है कि जीवन मुक्ति से पहले मुक्ति का वर्षा है। तो सबसे पहले हमें मुक्त होना है। तो मुक्त होंगे अर्थात छूटेंगे तभी हम जीवन मुक्त होंगे। तो जब हम बाबा से मिलन मनाना शुरू करें तो सबसे पहले हमें सारे अन्य हमारे फैले हुए जो बुद्धि के अंदर मन के अंदर संकल्प हैं उनसे स्वयं को मुक्त करना है। तो जितना हम बाबा के प्रेम में बाबा के संबंधों में अपनी संकल्पों को स्थित रखेंगे उतना ही हम और तरफ के चाहे अलौकिक कारोबार है चाहे लौकिक कारोबार है उस सब से अपने आप को मुक्त रख सकेंगे। तो बजाय इसके कि हम अपने लौकिक और अलौकिक संकल्पों को समेटें अगर हम अपने परलौकिक परमपिता परमात्मा के संबंधों को विशेष समृद्धि में रखेंगे तो ये विस्मृति ऑटोमेटिक हो जाएगी। एक है छोड़ने का पुरुषार्थ करना, दूसरा है पाने का ध्यान रखना। तो यदि हम प्राप्ति का ध्यान रखेंगे तो भूल जाएगा ऑटोमेटिकली, बाकी सब भूल जाएगा। तो एक तो हो गया संबंध, और दूसरे है फायदा, जिसको हम प्राप्ति कहते हैं। तो संसारिक, लौकिक या अलौकिक जितने भी हमारी प्रवृत्ति है, उससे होने वाली प्राप्ति का आधार भी हमारा पिता है। इसलिए इस थोड़े से टाइम में अगर हम ध्यान रख के कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करके बुद्धि को एक तरफ लगाकर एक ही लक्ष्य से बैठेंगे तो ये परलौकिक प्राप्ति हमें अलौकिक और लौकिक को से भी भरपूर कर देगी। तो हमारी सबसे बड़ी गुड लक ब्राह्मणों की क्या है, हमें यह भी स्मृति में रखना है कि हमारी गुड लक तो है ही, हमारी सबसे बड़ी गुड लक क्या है, हमारी सबसे बड़ी गुड लक ये है कि हम सारे कल्प वृक्ष के, आप सारा कल्प वृक्ष अपने ध्यान में लाए, सारे कल्प वृक्ष में अपने सारे जन्मों को ध्यान में लाएं, तो सारे कल्प वृक्ष में अपने सारे जन्मों में वर्तमान समय इस जन्म में हम कहां बैठे हैं, हम कहां पर हैं। आप देखेंगे कि जो बाबा ने हमें संगम युग पर सुदर्शन चक्र दिया है, हमें जो विश्व घड़ी गिफ्ट दिया है, उसमें हम कहां हैं। तो आप देखेंगे कि हम सारे कल्प वृक्ष के जड़ में हैं, फाउंडेशन में हैं, रूट्स में हैं। ये हमारी गुड लक है। और जितनी भी आत्माएं हैं वो शुरू ही करती हैं बाद में और एंड तक और दूर होती जाती हैं, ईस्ट वेस्ट फैलती जाती हैं। केवल बाबा के ब्राह्मण बच्चे, यूं तो बाबा के सभी बच्चे हैं, आत्माएं सब मुक्ति की अधिकारी हैं, दुख से छूटने की अधिकारी हैं, लेकिन केवल बाबा के ब्राह्मण बच्चे जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा बाबा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, वह जड़ में है और सबसे पावरफुल, सारे ही ट्री में सबसे पावरफुल क्या होता है? रूट्स, जड़। जैसे बिल्डिंग में सबसे पावरफुल फाउंडेशन होता है, ऐसे ही ट्री में सबसे पावरफुल रूट्स है। तो हम सब रूट्स हैं, जड़ में बैठे हैं। और आप जानते हैं बाबा हमको पूर्वज बोलते हैं, एंसेस्टर्स, ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स, एडम के फैमिली के। तो हम रूट्स में बैठे हैं, तो रूट्स का के ऊपर सारे वृक्ष का आधार है, हम सब जानते हैं। लेकिन रूट्स को शक्ति कौन देता है? रूट्स में शक्ति कहां से आई? तो हम जानते हैं कि सीड से आती है। तो इस समय है महात्माएं डायरेक्टली सीड से कनेक्टेड हैं, जो सारे विश्व के सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष, वैरायटी कल्प वृक्ष के बीज हैं, वो हमारे पिता हैं, विश्व के क्रिएटर हैं, नए विश्व के, वो सबसे पहले हमारे क्रिएटर हैं। और उस क्रिएटर पिता के साथ आज हमारा प्राप्ति का डायरेक्ट मिलन होने वाला है। यानी आज हम रूट्स में बैठे हुए बच्चे उस सीड से ऐसी ईश्वरीय पालना लेंगे जो हमें इमीडिएट, अभी नहीं बल्कि सारे कल्प के लिए हमें शक्तिशाली बनाएगी। तो इस थोड़े से टाइम का कितना महत्व हो गया आप सोच सकते हैं। तो जब कोई प्राप्ति बहुत मोस्ट वैल्यूएबल होनी हो तो व्यक्ति और सब चीजों की तरफ से ध्यान हटाकर क्या करता है? उस एक ड्रॉप, जैसे कहते हैं कि मोती बनता है तो एक बूंद के लिए जगह होती है, तो उस ऐसी प्राप्ति के लिए हमें अपनी बुद्धि की तिजोरी को खोल के रखना है। अब आप देखिए दृष्टि, हमें बाबा ने तीसरा आंख दिया, आज हम बाबा से दृष्टि लेंगे। अब क्या दृष्टि लेंगे? एक तो है कि दृष्टि लेंगे उससे शक्ति मिलेगी, ये तो है। किस चीज की शक्ति हमें उस थोड़े से समय में लेनी है? तो यदि हम देखें के कलयुगी दृष्टि और सतयुगी दृष्टि में क्या फर्क है, तो सतयुगी दृष्टि क्या देखती है? जब सतयुग में होते हैं हम, आजकल बाबा ने हमें अपनी पांचों स्टेज का एक्सपीरियंस करने को कहा हुआ है, तो जब हम सतयुग में होते हैं तो दृष्टि क्या देखती है? अच्छा ही अच्छा, सीन सीनरी भी अच्छे, मनुष्य भी अच्छे, देवता, पेड़ पौधे भी अच्छे, हर चीज पैराडाइज। अर्थात सतयुग में हमारी दृष्टि अच्छा ही देखती है। ये अच्छा देखने के लिए प्रैक्टिकल अभी हमको कैसी दृष्टि रखनी है। तो अगर आप हमारे ज्ञान का लक्ष्य देखेंगे तो बाबा क्या कहते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की शक्ति, खराब में अच्छा देखने की शक्ति। इसलिए हमारे सारे ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप क्या है, गुणग्रही बनो। तो हमें आज बाबा से जो दृष्टि लेनी है उसमें हम एक वरदान ले लें, एक मेन वरदान ले लें कि बाबा आप हमेशा कहते हैं कि बच्चे कोई कुछ भी करे, कोई कैसा भी हो, आपने उसको आशीर्वाद देना है। बाबा कहते हैं जरूर हमारा उसमें कल्याण है। उस समय हम समझते भी हैं कि बाबा ठीक कहते हैं। जब हम दुनिया में जाते हैं और किसी भी कारण से कोई आपको तंग करता है, परेशान करता है, विघ्न डालता है, रुकावट डालता है, आपकी शांति को भंग करता है, आपके पुरुषार्थ में रोड़ा अटकाता है, तो मन से ये सोचते हैं इसको हम आशीर्वाद कैसे दें, इसको ब्लेसिंग कैसे दें। तो क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो इसका कारण क्या है, बाबा कह रहे हैं कोई कुछ भी करे आपने उसको अच्छा ही सोचना है, उसके ऊपर भी आशीर्वाद करना है, उसके ऊपर मर्सी करना है। कैसे करें, तो इसके लिए चाहिए हमें शक्ति, ऐसी दृष्टि जो खराब देखे ही नहीं, क्योंकि हमको तीनों कालों का ज्ञान है। अभी कलयुग है लेकिन जा रहा है, ये रहने वाला नहीं है, विदाई ले रहा है। कोई व्यक्ति का जेल का टर्म खत्म हो रहा हो तो खुश होता है। तो बाबा हमें ज्ञान ही ऐसे मौके पर देते हैं, शक्ति ऐसे मौके पर देते हैं जब आगे शुभ ही शुभ है। इसलिए ये जो जरा सी बात मन से खिसक जाती है कि बाबा कहते हैं, हम मानते भी हैं कि अच्छा होना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, नेगेटिव को भी पॉजिटिव देखना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल करने में रुकावट आ जाती है। कहते हम और सबको आशीर्वाद देंगे, सबके लिए शुभकामना रखेंगे, परंतु ये जो दो तीन हमारे आसपास है ना, इसके लिए बड़ा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए अपनी दृष्टि को ऐसा चेंज कर लें, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अपनी आईज में, तीसरे आंख में ऐसी शक्ति भर लें जो मौके पर तीसरा आंख बंद नहीं हो जाए, क्योंकि तीसरा आंख तो हमें वही बताता है जो बाबा कहते हैं। लेकिन जब कोई सिचुएशन आती है तो तीसरा आंख बंद हो जाता है, दो आंख खुल जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर कहते हैं ओहो तीसरा आंख बंद हो गया, लापरवाही हो गई। तो हम बाबा से आज ऐसी दृष्टि लें, हे बाबा आप अमर भव का वरदान देते हो वो तो है। हर एक ब्राह्मण को सबसे पहले अमर भव का वरदान है, दुनिया वाले मृत्यु को प्राप्त हैं क्योंकि शरीर मानते हैं। ब्राह्मण पहले दिन ही जन्म से ही अमर हो जाता है क्योंकि आत्मा मानता है। ब्राह्मण की सारी कमाई आत्मा के कारण से अविनाशी है क्योंकि आत्मा अमर है। दुनिया वालों की सारी कमाई शरीर पर आधारित है इसलिए विनाशी है, लेकिन उस अमर आत्मा में अच्छा अच्छा हम फुल भर सकें। हे शिव बाबा, हमारी तीसरी आंख को सदा खुला रखना, मौके के ऊपर बंद ना हो जाए। तो यदि हम आज अपने संकल्पों को समेट कर, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ये समेट कर, जब लेने का टाइम होता है तो झोली खाली रखी जाती है। कोई व्यक्ति आपको दे रहा है दाता और आपका आधा कटोरा ऑलरेडी भरा हुआ है तो आपको आधा ही मिलेगा। एक बेगर भी अपने कटोरे को खाली कर लेता है कि अभी तो मैं फुल ले लूं, भर लूं क्योंकि मिल रहा है। तो अपने बुद्धि रूपी तिजोरी को खाली करके, वेस्ट से भी खाली करके, वीकनेस से भी खाली करके ओपन रखना है। सागर दे रहा है तो सागर के लिए गागर को भरना कोई मुश्किल नहीं है, अपने आप भर जाएगी, केवल ढक्कन बंद ना करें या टेढ़ी ना करें। जब आप गागर को ओपन रखेंगे और उसका मुंह खुला रखेंगे तो अवश्य भरेगी, लेकिन अगर आपने पहले से उसमें कुछ भरा हुआ है, उसको खाली नहीं किया या उसके ऊपर ढक्कन लगा लिया, कोई संकल्प में खो गए या उसका मुंह टेढ़ा कर लिया, फिर आप फुल प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए प्रेम में जितना अधिक से अधिक बाबा का प्यार, बाबा की प्राप्तियां याद करेंगे, बाबा ने हमें क्या दिया है क्या देते हैं, उतना मेरे ख्याल में हम और सब बातों से भूलकर एकदम जैसे कोई खोया हुआ व्यक्ति होता है, लव लीन होता है, ऐसी अवस्था में बैठेंगे तो मेरे ख्याल में हम बाबा से अच्छी तरह मिलन मना सकेंगे। ओम शांति।
हमें बिंदु से Bye.